एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1964 की फिल्म पूजा के फूल का गीत, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। क्या हुआ जब मदन मोहन ने उस्ताद रईस खान को इस गीत को रिकॉर्डिंग टेप पर बजाकर सुनाया? खान साहब ने ऐसा क्या किया कि मदन मोहन ने इस गीत की दोबारा रिकॉर्डिंग करवा ली? फिर यकायक दोनों की दोस्ती में कभी न भरने वाली दरार क्यों पड़ी? ये सब आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं उषा छाबड़ा।
संगीतकार मदन मोहन, गायिका लता मंगेशकर और राजेंद्र कृष्ण व राजा मेहंदी अली खान जैसे गीतकारों का जब जब साथ हुआ, तब तब रचे गए ऐसे अनमोल नगमे जो सदाबहार बन चुके हैं और जिन पर समय का, बदलते युग का और बदलती पीढ़ियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ही एक फिल्म संगीत के धरोहर का अनमोल नगीना है फिल्म पूजा के फूल का गजल नुमा गीत, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है। फिल्म की नायिका माला सिन्हा पर भीम सिंह निर्देशित इस फिल्म के अन्य मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, निम्मी, संध्या राय, अशोक कुमार और प्राण। फिल्म में कुल 9 गीत थे जिनमें 4 लता के एकल, 2 रफ़ी के एकल, 1 आशा भोसले का एकल और 2 रफ़ी आशा डुएट्स। गौरतलब बात यह है कि उन दिनों लता जी और रफ़ी साहब के बीच अनबन की वजह से वे साथ में नहीं गा रहे थे। इस वजह से इस फिल्म में भी 9-9 गीतों की गुंजाइश के बावजूद दोनों का साथ में गाया हुआ कोई गीत नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि 9 गीतों में अगर सही मायने में किसी गीत को कामयाबी मिली तो वह लता जी का गाया मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है ही था। 1964 का साल संगीतकार मदन मोहन के लिए एक महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि इसी साल उनके संगीत से सजी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में आईं, जैसे कि वो कौन थी, आपकी परछाइयाँ और शराबी, जिनके गाने बिना का गीत माला के वार्षिक कार्यक्रम में भी गूंजे। हालांकि पूजा के फूल का यह गीत वार्षिक गीत माला का हिस्सा नहीं बना, पर इससे गीत की उत्कृष्टता का कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध रूप से गजल तो नहीं, पर गजल नुमा शैली में राजेंद्र कृष्ण ने 3 शेर लिखे जिनमें 1 को मुखड़ा बनाया गया और बाकी 2 को अंतरे। बात जो उनसे चली वो इधर आके रुकी, नाम जब उनका लिया, एक खुशबू सी उड़ी, एक तसव्वुर है जो मदहोश किए जाता है। इतने खूबसूरत बोलों को अगर सही धुन और गायकी न मिले तो गीतकार की मेहनत तो विफल हो जाती है। संगीतकार मदन मोहन जुट गए गीत की धुन निर्माण पर। धुन बन गई, बेहद सुरीली बनी और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड भी हो गई। सभी को गीत बहुत पसंद आया। मदन मोहन साहब को भी यह रचना बहुत प्यारी लगी। इस गीत में छोटे छोटे सितार के पीसेस उस्ताद रईस खान ने बजाए थे। पर मुख्य रूप से पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर का बहुत प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किया गया था, ठीक वैसे जैसे फिल्म मेरा साया के नैनों में बदरा छाए गीत में। अब हुआ यूं कि फिल्म पूजा के फूल के निर्माण के दौरान मदन मोहन की मुलाकात एक बार फिर रईस खान साहब से हुई और यूं ही मदन मोहन ने टेप पर वही गाना फिर एक बार बजा दिया। गीत शुरू होते ही खान साहब ने अपना सितार उठाया और गाने के लिए सितार छेड़ दी। इस बार सितार पर नए नए इंटरल्यूड्स बजने लगे, नए सुर, नई तरकीबें। टेप पर गीत समाप्त हो जाने पर भी रईस साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इस गीत के मीटर पर एक के बाद एक पीस बजाते चले जा रहे थे। रईस खान के सितार से इस तरह के विविध पीसेस सुनकर मदन मोहन पागल हुए जा रहे थे। हर पीस पर उन्हें लगता कि काश यह इस गीत का हिस्सा बना होता। जब सारे पीसेस सुन लिए तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो गीत को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने फौरन AVM प्रोडक्शंस को फ़ोन लगाया और कहा कि वो इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। गीत फिर से रिकॉर्ड हुआ पर अब संतूर की जगह मुख्य रूप से सितार सुनाई देने लगी। आज यह गीत जितना मदन मोहन, लता मंगेशकर और राजेंद्र कृष्ण की वजह से जाना जाता है, उतना ही इसकी कामयाबी में योगदान उस्ताद रईस खान के सितार का है। मदन मोहन और उस्ताद रईस खान की दोस्ती बेहद गहरी थी। 60 के दशक में मदन मोहन की कई कालजयी रचनाओं में खान साहब का दिलकश सितार सुनने को मिला। पर 70 के दशक में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जो न घटी होती तो सुरीले संगीत रसिकों के लिए अच्छा होता। हुआ यूं कि एक मोड़ पर आकर मदन मोहन को यह लगने लगा था कि उनकी महफिलों में रईस खान का सिर्फ उनकी दोस्ती की खातिर सितार बजाना ठीक नहीं है। उन्हें लगा कि रईस खान को तो वो इस तरह बुलाकर उनसे सितार बजवाकर दोस्ती का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने रईस खान को उनका वाजिब मेहनताना देने की बात अपने मन में सोची। मगर परेशानी यह थी कि अपने दोस्त से पैसों की बात वो कैसे करते भला। इसलिए उन्होंने 1973 की एक महफिल के बाद अपने मैनेजर से कहा कि वो खान साहब से उनकी फीस के बारे में पूछें। मैनेजर ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। रईस खान साहब ने उस वक्त तो मैनेजर साहब से कुछ नहीं कहा, मगर मन ही मन में उन्हें यह बात बहुत अंदर तक चुभ गई और उन्होंने इसे अपना अपमान मान लिया। अपने करीबी दोस्तों में से एक मदन मोहन से वो इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं कर रहे थे। रईस खान जितने बेहतरीन कलाकार थे उतने ही तुनक मिजाज वाले भी थे। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। एक जख्मी शेर की तरह बदले की भावना उनके मन में घर कर चुकी थी। उन्होंने कुछ दिन बाद मदन मोहन को फ़ोन किया और कहा कि उनके एक दोस्त के घर में एक शादी है और शादी के जलसे में गाना गाने के लिए आपको मेरे दोस्त ने बुलाया है, तो मदन भाई आप कितने पैसे लेंगे गाना गाने के? अब चौंकने की बारी मदन मोहन की थी। बहुत अजीब लगा उन्हें कि रईस खान ने उन जैसे कलाकार को शादी में गाने की बात करके उनकी तौहीन की है। यह तौहीन अब मदन मोहन बर्दाश्त नहीं कर सके। बस यहीं से दोनों के मन में ऐसी खटास पैदा हुई कि इन दो अजीम फनकारों का साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस अफसोसजनक कड़ी के बाद कुछ लोगों का कहना था कि फिर कभी मदन मोहन ने अपने गीतों में सितार का प्रयोग ही नहीं किया। पर जब इस बात की पुष्टि के लिए कुछ वर्ष पूर्व हमने स्वयं मदन मोहन जी की सुपुत्री संगीता गुप्ता जी से संपर्क किया, तब उनसे पता चला कि उस्ताद रईस खान साहब से अनबन होने के बाद मदन मोहन जी ने उस्ताद शमीम अहमद से खुद सितार सीखा और अपनी आखिर की कुछ फिल्मों में अहमद साहब से ही सितार बजवाया।
तो दोस्तों, यहाँ पर आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर उषा छाबड़ा का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने।
Radio Playback India.